તારીખ 28/7/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 355 અને 356 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 284
સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 355 ચાલે છે ધ્યાનનો વિષય લીધો છે વિકલ્પને કાઢી નાખવા અને આત્માનું ધ્યાન કરવું એની વિધિ શું છે એ પ્રથમ તો આત્માને ઓળખવો જોઈએ ઓળખા પછી મહિમા આવે તો ધ્યાન થાય એ પહેલા વિકલ્પને કોઈ છોડવા માંગે તો છૂટી શકતા નથી એટલે એ સિદ્ધાંત થયો કે સાચું જ્ઞાન થાય તો સાચું ધ્યાન થાય અહીંયા જ્ઞાન એટલે ઓળખાય બીજા પેરેગ્રાફથી છે પહેલા સાચું જ્ઞાન કરવું કે હું ચૈતન્ય જુદો છું અને આ બધું જુદું છે એવું અંતરમાં ભેદ જ્ઞાન કરે ઓળખાણપૂર્વક ભેદ જ્ઞાનનો પ્રયોગ ચાલવો જોઈએ ભેદ જ્ઞાન પ્રયોગાત્મક છે વિકલ્પાત્મક નથી એટલે જે સાચું જ્ઞાન કરવું છે એમાં પણ ભેદ જ્ઞાન પણ છે અને ઓળખાણ પણ છે ઓળખાણપૂર્વકનું ભેદ જ્ઞાન હોય તો નિર્વિકલ્પ સાચું ધ્યાન થાય આત્મા કા નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરને કા વિષય ચલતા હૈ જિસકો પહેલા સ્વરૂપ કી પહેચાન હોતી હૈ પહેલે ઉસકો હી સ્વરૂપ કી મહિમા આતી હૈ સ્વરૂપ પ્રતિ કે પરિણામ કે ખિંચાવ ચાલુ હોતા હૈ ઓર ઉસી કો હી સહેજ રૂપ મેં ધ્યાન હોતા હૈ એસે સહી પહેચાન બિના ઓર પહેચાન પૂર્વક કે ભેદ જ્ઞાન બિના કિસી કો ધ્યાન હોતા નહીં યાને વિકલ્પ કા અભાવ હોતા નહીં ઇસલિયે કહેતે હૈ કે પહેલે સચ્ચા જ્ઞાન કરના મેં ચૈતન્ય હું જુદા હું ભિન્ન હું સબસે ભિન્ન હું એ સબ ભિન્ન હિ ભિન્ન હૈ મેરે સે સબ ભિન્ન હૈ શરીર ભી મેરે સે ભિન્ન હૈ ઓર દૂસરે સભી પદાર્થ કુટુંબ પરિવાર મકાન કપડે આબરૂ કીર્તિ સબ ભિન્ન હિ ભિન્ન હૈ મેરે કુછ નહીં હૈ એસે અંતર મેં અપના ચૈતન્ય સ્વરૂપ કો ભિન્ન અનુભવ કરને કા પ્રયાસ હૈ વો પ્રયાસ કો યહાં ભેદ જ્ઞાન કહા હૈ જહાં તક સ્વાનુભવ નહીં હોતા સમ્યક દર્શન નહીં હોતા તબ તક ભેદ જ્ઞાન પ્રયાસ રૂપ હૈ ઓર અનુભવ દશા કે બાદ જ્ઞાન દશા મેં સહી ભેદ જ્ઞાન હોતા હૈ વાસ્તવ મેં તો ઉસી કો હી ભેદ જ્ઞાન કહેતે હૈ ફિર ભી એસા ભેદ જ્ઞાન હોને કા જો પ્રયાસ હૈ ઉનકો ભી યહાં ભેદ જ્ઞાન બોલને મેં આતા હૈ ક્યોંકિ વહાં ભી ભિન્ન હોને કા પ્રયાસ હી ચલતા હૈ ભિન્ન હોને કી પ્રક્રિયા હી ચલતી હૈ उस प्रक्रिया को यहाँ भेद ज्ञान बोला है। यह सब जुदा ही है ऐसा निश्चय करने के बाद ऐसा कार्य होना चाहिए, पहले ऐसा निश्चय होना चाहिए, निर्धार होना चाहिए और निश्चय होने के बाद उस प्रकार का परिणमन होना चाहिए। प्रत्येक कार्य में मैं जुदा ही हूँ, प्रत्येक कार्य में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, सोने में, जितने देह की क्रिया है, वचन की क्रिया है, मन की क्रिया है, सबसे मैं भिन्न ही हूँ। प्रत्येक कार्य में मैं भिन्न ही हूँ, भिन्न ही हूँ, ऐसा प्रतिक्षण लगना चाहिए। ऐसा प्रतिक्षण विचार करे ऐसी बात नहीं, ऐसा प्रतिक्षण लगना चाहिए, उसी को प्रयास कहते हैं। लगता है तो प्रयास कहते हैं, विचार में लगता नहीं है, विचार चलता है, विकल्प हो जाता है और कोई आगे बढ़ने का काम नहीं होता। ऐसा प्रतिक्षण लगना चाहिए, खाते पीते बोलते हुई बात लिया है, खाते पीते बोलते चलते फिरते या किसी भी कार्य में मैं स्वयं जुदाई, अपने को स्वयं जुदाई लगने लगे तो विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होगी, हो सकती है। जुदा लगने लगे तो भिन्नता नहीं लगे, मैं भिन्नता महसूस नहीं हुए तो निर्विकल्प स्वानुभव यानी ध्यान जिसको बोलते हैं वो ध्यान नहीं होगा। ध्यान कोई शरीर की क्रिया नहीं है, ध्यान कोई वचन की मौन रहने की क्रिया नहीं है, ध्यान कोई मन का विकल्प भी नहीं है, ध्यान तो उपयोग का स्वरूप में स्थिर हो जाना, उपयोग को जम जाना, शांति के सरोवर में डूब जाना, उसी को कहते हैं ध्यान। प्रवचन सामर्थ्य वक्त तो कहीं ध्यान था ही नहीं, जो ध्यान तो स्वरूप निश्चय पछीनो विषय है, स्वरूप ने ओळखाण पछीनो विषय है। इतले હજી તો વેદનામાં પ્રવેશ ન હોય એને તો ધ્યાનનો કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી, આ તો ધ્યાનનો વિષય આપણી સામે સ્વાધ્યાયમાં તો જે વિષય સામે આવે એના ઉપર સ્વાધ્યાય ચાલે, પોતાની ભૂમિકાનો વિષય ન હોય તો ભાવનામાં આવવું જોઈએ કે આવી દશા, આવું ધ્યાન મને પણ પ્રાપ્ત ક્યારે થાય, મને પ્રાપ્ત થાય તો સારું, ઉપરની ભૂમિકાનો વિષય સામે આવે ત્યારે એને ભાવનામાં લેવું જોઈએ। કેમ કે સ્વરૂપ ધ્યાન થવું એ કોઈ સાધારણ વાત નથી, પ્રથમ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં જ ભવની અનંતતાનો નાશ થાય, એટલે કે અનંત ભવોના ભૂક્કા બોલાઈ જાય એવા એક પ્રચંડ પુરુષાર્થનું એ પરિણામ છે, ફળ છે, કોઈ સાધારણ વાત તો નથી. અને અનંત કાળમાં ત્યાં સુધી જીવ પહોંચ્યો નથી એટલે અનંત પરિભ્રમણ ચાલુ રહ્યું છે. હા, એવી વાત છે. દર્શન મોહને તોડવો એટલે ભુજાએ કરીને સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર તરવાની વાત છે. ભુજાએ કરીને એટલે વાણમાં કે સ્ટીમરમાં બેસીને માણસ સમુદ્ર તરે, પણ હાથ વીંજીને ભુજા એટલે હાથ, હાથ વીંજીને નદી તરવી હોય તો મુશ્કેલ પડે. આ તો સ્વયંભૂ રમણ દ્રષ્ટા, બસ આ સાધારણ સમુદ્ર નહીં, અરબી સમુદ્ર કે આટલાન્ટિક સમુદ્રની વાત નથી. આપણે તો આ હિન્દુસ્તાન પાસે સમુદ્ર પણ નાનો ગણાય છે. આ પૃથ્વીના માં તો પેસિફિક ને આટલાન્ટિક બે મોટા સમુદ્ર છે. એટલાન્ટાની નીચે છે આટલાન્ટિક કહેવાનો. એ તો બધા નાના નાના છે, ખાબોચિયા છે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર પાસે. તો એટલો મોટો અસંખ્ય યોજન, કેટલો અસંખ્ય યોજન જેની પહોળાય છે એ હાથે ચિત્ર કરવો સહેલો છે, દર્શન મોહ તોડવો સહેલો નથી. એવી વાત છે. અનંત કાળમાં એ નથી કરી શક્યો. પહેલા તો એની પદ્ધતિ, એની યોજના એ સમજમાં આવવી મુશ્કેલ છે. જ્યાં સમ્યક દર્શનની ચર્ચા ચાલે છે ત્યાં પણ ત્યાં સુધી પહોંચવાની જે પદ્ધતિ છે, સિસ્ટમ છે, વ્યવસ્થા છે, એની ખબર નથી. એમ નેમ ઉભાંગડે ચાલે છે, એવી બધી અંધારું છે. હા, અને આટલું આટલું જ્ઞાનીઓએ કદા કીધા પછી ચોખ્ખી વાત કરે છે કે પહેલાં સાચું જ્ઞાન કરો, પહેલાં ઓળખાણ કરો. બેસના વચનામૃતમાં ઓળખાણના કેટલાય બોલ છે. ધ્યાન જવું જોઈએ, પોતાનું ધ્યાન જવું જોઈએ. નથી ધ્યાન જતું એનો અર્થ શું છે? પોતાનું આત્મકાર્ય કરવાનું લક્ષ્ય નથી, પોતાનું પ્રયોજન ઉપર લક્ષ્ય હોય તો ધ્યાન ગયા વિના રહે જ નહીં. એવું છે. क्या कहते हैं, खाते पीते बोलते हर चलते फिरते किसी भी कार्य में मैं जुदा ही हूं ऐसा लगे तो विकल्प छूटकर मिटकर, विकल्प टूटकर निर्विकल्प स्वानुभूति हो गए. इसके बिना कोई निर्विकल्प सहानुभूति होने का कोई प्रयोग, कोई सिस्टम, कोई पद्धति नहीं है. ये विधि का विषय है. विधि है वो प्रयोजनभूत विषय है, और प्रयोजन की भूल वो ग्रहित मिथ्यात्व है. क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है. ग्रहित मिथ्यात्व का क्लास मालूम है? ये मुसलमान है वो ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं, हिंदू भी ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं, क्रिश्चियन भी ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं, और विधि की भूल करने वाले जैनी भी ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं. सबों का एक क्लास है. थोड़ा कड़क लगे ऐसी बात है, लेकिन हम भूल से भी ग्रहित मिथ्यात्म में नहीं चले जाएं, उसकी बहुत बहुत दरकार करनी आवश्यक है। वो भी ग्रहित में जाता है। ऐसा है कि मानना नहीं मानना अलग बात है, मध्यस्थ पहले होना हो जाना चाहिए। जहाँ तक पहचान करने की योग्यता नहीं हो, पहचान करने की क्षमता नहीं हो, वहाँ तक मानना नहीं मानने का सवाल पैदा नहीं होता। न मानना है न नहीं मानना भी है, दोनों बात है। अपने को जिज्ञासा में रहना यही उचित है और उसमें दोष नहीं है। जिज्ञासा में रहने का दोष नहीं है, मानने नहीं मानने में भूल होने में दोष है, उतनी सी बात। तो जहां तक अपन योग्यता में तैयार नहीं हुए, यानी दृढ़ मुमुक्षुता नहीं हो, पूर्णता का लक्ष्य नहीं हो और अपने योग्य प्राप्त उपदेश को ग्रहण करने का, परिणमन करने का, अवधारण करने का तत्परता नहीं आई हो, ये मेरे लायक बात है, बस इसका मैं प्रयोग चालू कर दूं, ये मेरे लायक बात है, मुझे लागू पड़े ऐसी बात है, मेरे को भी इसका प्रयोग करके ठीक करना है, ऐसा प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की योग्यता, तत्परता और इसके बाद अंतरात्म वृत्ति, अंतर्मुख होने की वृत्ति हो गई, तभी ज्ञानी को या वितराग को पहचानने की योग्यता होती है। इसके पहले नहीं होते। इसके पहले विश्वास आ सकता है, हमारे असमाधान का समाधान होता है तो विश्वास आ सकता है, लेकिन वो सही पहचान नहीं है। वो विश्वास वाली बात भी सही पहचान नहीं है, क्योंकि उसमें डिग जाता है। इसमें तो बौद्धिक स्तर, उसमें अधिकतर तो बौद्धिक स्तर का उसमें प्रकार रहता है, अनुभव का विषय बहुत उसमें कम आता है। फिर भी कभी कभी अपना अनुभव से असमाधान और समाधान का प्रकार बनता है तो उसको युक्ति कहते हैं, युक्ति से समाधान किया। जैसे दृष्टांत लेवे कि कृपालु देव ने कहा कि पश्चात दुखते सुख नहीं, तो कोई अपना अनुभव से मिलान करते हैं कि बात तो ठीक ही है, पहले मिठाई खाते थे सुख लगा और फिर खाते खाते दुख लगा, मिठाई खाना छोड़ दिया हमने, अगर खाएंगे तो और दुख बढ़ जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, कुछ तकलीफ हो जाएगी। वह तो पीछे से दुख हुआ तो पहले वाला सुख था, वो सुख की कल्पना थी, सुख नहीं था। ऐसे प्रत्येक पंचेंद्रिय के विषय में वही हालत है जीव की। तो हमने तो पांचों इंद्रियों के विषय में सुख ही माना है, हमारे अनुभव से ज्ञानी कुछ दूसरी बात करते हैं वो बात ठीक लगती है, तो वो अनुभव ज्ञान नहीं है हमारा, लेकिन अनुभव की युक्ति हुई। क्यों युक्ति क्यों और अनुभव क्यों नहीं? अनुभव तो तभी कहा जाता है कि अनुभव के काल में दुख लगे, तब खाते खाते दुख लगे, तब खाते खाते खाने के विकल्प में आकुलता महसूस हुए, तब उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। ऐसा जो मिलान है वो मिलान से प्राप्त उपदेश का अवधारण होता है, चलते परिणमन में कोई प्रयोग होता है। तो वैचारिक भूमिका में जो बात अनुभव की समझ में आती है उसको युक्ति बोलते हैं। तो आगम से, युक्ति से, अनुमान से, तर्क से, विचार से, न्याय से समाधान होता है तो विश्वास आता है, लेकिन उसे ही पहचान नहीं। प्राप्त उपदेश को अवधारण करने का प्रयोगात्मक भूमिका में जो समाधान आता है उसमें पहचान आने लगती है, और फिर इसका ज्ञानी का अंतर परिणमन देख करके अंतरात्म वृत्ति समझ में आती है, और खुद को अंतर्मुख होने की जो जिज्ञासा है उसमें इसका प्रकाश होता है कि ऐसे अंतर्मुख हो ज्ञानी होते हैं और हुआ जाता है ऐसे। ये बात जब आती है तब सही पहचान होती है, तब मानने की बात आती है। इसके पहले मानने का माना वो माना नहीं है, भले ही कोई कहे कि हमने माना है, ज्ञानी इसका मान्यता का स्वीकार नहीं करते। भले ही अगला कहता है कि मैं तो आपको मानता हूं, मानता हूं, मान करके समर्पण करता हूं, मान करके भक्ति पूजा करता हूं, कुछ भी हो, वो बात ज्ञानी के ज्ञान में सम्मत नहीं है तो नहीं है, ऐसी बात है। ये पहला संकेत है, वो जो पहचान है वो पहला संकेत है, सम्यक दर्शन की लिंक, सम्यक दर्शन का प्रत्यक्ष कारण यहां से प्रकट हुआ। प्रत्येक समय, प्रत्येक वक्त अपने आप को जुड़ा लगना चाहिए। पहले भेद ज्ञान का अभ्यास करें, अभ्यास माना प्रैक्टिस, अभ्यास इतने प्रैक्टिस, तो स्वानुभूति थाए, तो निर्विकल्प अनुभव थाए, उसको यहाँ ध्यान कहते हैं। इसके पहले ध्यान के विषय में कल्पना में चढ़ना से गृहित मिथ्यात्व होगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। ये हुआ 355 पूरा हुआ, 356 प्रश्न। पूज्य गुरुदेव नु टेप रेकॉर्डेड प्रवचन सांभळता तथा आत्मधर्म वाँचिए त्यारे ऊंडाण थी एम थाय छे के आत्मा प्राप्त करी लेवो छे पण पछी प्रयत्न चालतो नथी। मूंझवण को, अपनी उलझन को बताइए, क्या प्रश्न किया है? कि जब हम गुरुदेव के टेप प्रवचन सुनते हैं या हम आत्मधर्म या कोई भी सत्साहित्य पढ़ते हैं तब तो ऐसा भाव जोर से आता है, लिखा है उंडाण से आता है, उंडे से आता है, कि हमको तो आत्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, बहुभ्रमण से मुक्त होना ही चाहिए, ऐसा आता है, फिर बाद में हमारा प्रयत्न नहीं चलता। किसी ने अपनी बात कही है, पूछी है, प्रश्न में जो वो बात है कि ऐसा उन्नान से आता है, ये ओवर एस्टिमेट है। अति परिणामी पणु, ओवर एस्टिमेशन, ज्यादा गिनती करना। क्यों? क्योंकि यथार्थ समझ पुरुषार्थ की उत्पादक है। वास्तविक समझ होवे पर पुरुषार्थ नहीं उठे, प्रयत्न नहीं चले, वो बात संभवित नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बनती नहीं, कभी कभी नहीं बनती। स्वजन का मृत्यु होवे और रोना आवे नहीं, बनता है कभी? और लाभ होवे, पुत्र परिवार बढ़े, पैसे बढ़े, संपत्ति बढ़े, सब कुछ बढ़े और खुशी होवे ही नहीं, बनता है संसार में? संसारी प्राणी बहुत, क्यों? लाभ नुकसान का सही ज्ञान होता है उनको, उसके विषय परिणाम हुए बिना रहेगा नहीं, तो वो वास्तविकता का ज्ञान हुआ, भले पारमार्थिक रूप से नहीं है, व्यवहार में तो वो वास्तविकता मानते हैं। तो यहाँ वाचता सांभता बराबर समझाए, मैंने आ कर लेवा जीव से एम ऊंडाण थी आवे छे, एम के छे ऊंडाण छेद नहीं, भले पोताने गमे एटलू ऊंडाण लागतू होय तो ऊंडाण नथी, खातरी शू? पुरुषार्थ नहीं उपड़ो, पछी पुरुषार्थ नहीं उपड़ो। सुगाने जी की भाषा तो ऐसी है, सुनते ही चोट लगनी चाहिए और प्रयास चालू हो जाना चाहिए, इसी का नाम सुना, वरना सुना नहीं, सुना है तो भी सुना नहीं, क्योंकि सुनने की कोई असर नहीं आई, असर आए तो चोट लगे, उसका नाम असर आई और प्रयास चालू हुए, वो तो ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ जो प्रश्न में बात है, उत्तर में तो देखें क्या समाधान देते हैं बहन श्री, वो तो पढ़ेंगे तब ख्याल में आएंगे, लेकिन प्रश्न में वो बात की गलती ख्याल में आती है कि उंडाण से लगे, उंडाण से ऐसा हुए कि मेरे को प्राप्त कर लेना ही है, और फिर बोलते कि हमारा प्रयास नहीं चलता, बात गलत है। जिसको उंडाण से लगे उसका प्रयास चले बिना रही नहीं, अगर प्रयास नहीं चला तो उंडाण किस बात का है ही नहीं, उंडाण वो तो एक कल्पना होगी उंडाण की भी, वो ज्यादा गिनती कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसा हमको होता है, ऐसा हमको होता है, बात गलत है ही नहीं सा। तो हमारे वो शुरू शुरू में हम जाते थे ऐसी चलता चर्चा चलती थी कि देखो जैन संप्रदाय में तो नव तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन बोला है, और बहुत से लोग मुमुक्षु हो, विद्वान हो, पंडित हो, हमको तो नव तत्व की पक्की श्रद्धा है, कैसी? बिल्कुल कच्ची नहीं है, फिर हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? हमको तो श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र की भी श्रद्धा है, नव तत्व की भी श्रद्धा है, और क्या चाहिए सम्यक दर्शन? और नव तत्व में एक आत्मा तत्व है, जीव तत्व है, तो हमारे आत्मा की श्रद्धा उसमें आएगी, मैं ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूं, मानता हूं बराबर। तो गुरुदेव के पास जो समझे वो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है तो लाओ निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प आनंद की अनुभूति हुई है आपको? तो बोलते कह ये तो नहीं हुआ, तो श्रद्धा नहीं है, जाओ। ये बात सोनगढ़ से प्रसिद्ध ज्यादा हुई, बाकी संप्रदाय में ऐसे ही चलता था, दिगंबर संप्रदाय में हैं हम लोग, हमारे देव गुरु शास्त्र सच्चे हैं, हम नग्न दिगंबर साधु को ही साधु मानते हैं, कपड़े वाले को तो साधु मानते ही नहीं। और नव तत्व की पक्की श्रद्धा है, इसलिए हम तो मानते हैं कि हमको सम्यक दर्शन है। अभी व्रतादि को धारण करेंगे तो पंचम गुण स्थान में गिनेंगे अपने आप को, फिर वो पड़ीमा शुरू कर देते हैं, शुल्क के लिए तक वो पहुंच जाते हैं, फिर दीक्षा लेते तो साधु बन जाते हैं। ये कोई वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, न सम्यक दर्शन है, न श्रावक पंचम गुण स्थान वाला है, न कोई मुनि दशा छठा सातवां गुण स्थान वाला है। पहले चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प आनंद की अनुभूति प्रकट होनी चाहिए, वो बात नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है, फिर आगे के तो कोई बात विचार करने योग्य भी नहीं है। पछतान ले लेते, प्रतिज्ञा कर देते, मानते कि हम प्रतिमाधारी हैं, ऐसे की प्रतिमा होती नहीं। निर्विकल्प आनंद के अनुभव के बाद भेद ज्ञान की प्रैक्टिस से बार बार निर्विकल्प आनंद का अनुभव से वितरागता जब बढ़ जाती है तब स्वरूप स्थिरता बार बार बढ़ने से कुछ एक प्रकार के राग का अभाव वितरागता के सद्भाव के कारण से होता है। क्या राग का अभाव हुआ वो तो विकल्प छूट गया, वो बात नहीं है, विकल्प हमको आता ही नहीं, हमको विकल्प नहीं आता, इसलिए हमको पड़ीमा है, वो बात नहीं है। वितरागता का सद्भाव होना चाहिए, स्वरूप स्थिरता का सद्भाव होना चाहिए। उस वितरागता के सद्भाव के कारण से राग का अभाव हुआ वो सही अभाव है, सम्यक अभाव है। तभी जैसे जैसे जिस जिस प्रकार के राग का अभाव हुआ उसको पड़ीमा प्रतिमा कहते हैं, वो प्रतिमाधारी है। प्रतिज्ञा लेने से कोई हो जाते हैं प्रतिमाधारी, वो बात यथार्थता में नहीं है। संप्रदाय में ये होता है वो ज्ञानी मानते नहीं है, इसलिए वो त्यागी लोगों को बुरा लगता है कि हमको त्यागी नहीं मानते, हमको मुनि नहीं मानते, हमको ऐसे नहीं मानते, वैसे नहीं मानते। लेकिन वितरागता तो ले आओ, आनंद की अनुभूति लाओ, वो तो जानते भी नहीं। सम्यक दर्शन कैसे होता है वो समझते नहीं और मुनि बन के बैठ जाते हैं। ये बात हुई आज का यहाँ तो ये बात है कि समझ यथार्थ हुई तो प्रयास चलेगा, चलेगा और चलेगा ही। प्रयास नहीं चलता है, समझ लेना चाहिए कि मेरी समझ यथार्थ नहीं है। अब भूल कहाँ होती है कि अपनी समझ को शास्त्र से लोग मिलान करते हैं, ज्ञानियों के वचन से मिलान करते हैं, ज्ञानी के वचन को शास्त्र की बातें, तो हमारी समझ सही है तो फिर वो नव तत्व की श्रद्धा वाली बात हो गई, हुई कि नहीं हुई, वो सही नहीं है। तो मेल खाती है तो सही क्यों नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। हम उल्टी सुलटी तो मानते नहीं, जैसा कहते हैं वैसा ही मानते हैं। तो यथार्थ तब है कि पुरुषार्थ चले, पुरुषार्थ नहीं चले तो यथार्थ नहीं। ये इसका स्वरूप है, इसका लक्षण वही है। बाकी तो बुद्धि वाले लोग होते हैं, पढ़ डालते हैं शास्त्र को, धारणा कर लेते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, पुरुषार्थ होता नहीं, प्रयत्न होता नहीं। शास्त्र में भी वो बात है कि परलक्षी ज्ञान में 11 अंग तक नहीं, 11 अंग और 9 पूर्व, तो 12वां अंग का जो 14 पूर्व है उसमें 9 पूर्व, 5 बाकी रह गया, इतना ज्ञान हो जाता है। कितना? 11 अंग और 9 पूर्व। अनंत बार किया, कितनी बार किया? अनंत बार किया। कषाय की ममता कितनी होती है तभी हो सकता है, बाह्य तपश्चर्या में लब्धि से ये होता है। लब्धि तो चमत्कार लगे, ऐसा शास्त्र ज्ञान लगे को हो, तो ज्ञान का समुद्र है इनके पास, तो ऐसा लगे। ज्ञानी उसको ज्ञानी नहीं कहते। त्याग को त्याग नहीं कहते, ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, तो बुरा लगे कि नहीं लगे? कहते हैं कि स्वलक्षी समझ हो और अंतर्मुखी पुरुषार्थ हो, तभी तो यथार्थ है। इसके पहले ये बात कोई यथार्थ नहीं है। हाँ, तत्व का ज्ञान व्युत्थम अभिगदो, ऐसा लिया 13वीं गाथा। भूतार्थ थी जानेल जीव, जीव वड़ी पुण्य पाप ने आश्रो बन संवर्धिरा मोक्ष ते सम्यक है। भूतार्थ थी इतने अपना मूल स्वरूप का अनुभव पूर्वक ये 9 तत्व का जो ज्ञान है उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान को सम्यक दर्शन बोला, ज्ञान प्रधान सम्यक प्रधान की बात है। तो वहां तो स्पष्ट है कि भूतार्थ आश्रय स्वरूप का आश्रय चलता है, स्वरूप का आश्रय बनता है, तो 9 तत्व का ज्ञान है वो यथार्थ है। बाकी 9 तत्व की परिभाषा तो सब समझ लेते हैं, उसका कोई उस ज्ञान को कोई ज्ञान कहते हैं नहीं, उस श्रद्धान को कोई श्रद्धान भी नहीं कहते। तो बात तो स्पष्ट है, अध्यात्म शास्त्र में तो विषय खुला ही है। उन समाधान के सब कि आत्मा प्राप्त न थाय त्या सुधी प्रयास क्रिया करवो थाकवो नहीं। तो એટલે એનો અર્થ શું છે કે જેને યથાર્થ સમજાય છે તેને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જંપ વળતો નથી, એક અજંપો ઉત્પન્ન થાય છે। અજંપ જંપ સમજતે ચેન ચેન ઓર અજંપા મેને બેચેન, હા, जहां तक प्राप्ति नहीं हो वहां तक चैन नहीं होना चाहिए। हमको हमारी आत्म शांति चाहिए, आत्म शांति होगी तभी हमको चैन है। अशांति में हमको चैन नहीं है, जहां तक शांति की प्राप्ति नहीं है वहां तक अशांति है, और अशांति है वहां तक चैन नहीं है। वो लक्षण बराबर है, और जिसको चैन नहीं उसको प्रयत्न चलेगा, प्रयास चलेगा। दूसरे को जिसको चैन है उसको प्रयास कैसे चलेगा, वो तो खा पी के सो जाते हैं और नींद भी अच्छी आ जाती है, तो शरीर की तंदुरुस्ती भी ठीक रहती है, और कभी तंदुरुस्ती बिगड़ती है तो बेचैन हो जाते हैं, क्या करें ऐसा होता है वैसा होता है क्या करें। ये तो ऐसा अनादि से चलता ही है, खा पी के सो जाते हैं और वैसे ही जीवन चला जाता है और मर जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। ये कोई जीवन नहीं है, ऐसा जीवन ये कोई जीवन नहीं है। आत्मा को शांति नहीं हुए, अशांति बनी रहे, ये कोई जीवन है क्या? वो जीवन ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जब तक आत्म प्राप्ति या आत्मा की शांति की प्राप्ति नहीं हो, वहां तक प्रयास चालू ही रखना चाहिए और थकान आना नहीं चाहिए। थकवू नहीं, थकान नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का थकान नहीं आना चाहिए। थकान वो तो लगने की चीज है, तो थकान लगता है कि नहीं लगता है? जैसे विचार कर करते थक जाए, पढ़ते पढ़ते थक जाए, वो तो थकान आएगी, लेकिन प्रयास में तो थकान नहीं आने चाहिए। प्रयास इसका नाम, प्रयास में थकान नहीं लगती, प्रयास में थकान नहीं लगती, क्योंकि वो प्रयोग है। प्रयोग में अपना स्वकार्य का रस बढ़ता जाता है, ये यथार्थ प्रयोग का स्वरूप है, यथार्थ प्रयोग का ये लक्षण है। नोट डाउन करें, प्रयास में थकान नहीं आती, रस आता है, और रस आता है उसमें थकान नहीं आती। जिसको थकान आती है उसको कृत्रिम प्रयास चलता है, यथार्थ नहीं चलता, कृत्रिम चलता है, तो थकान आ ही जाएगी। ये बात वाचवू विचारवू महिमा करवी आत्मा ने, इतले वांचन द्वारा, विचार द्वारा स्वरूप ने महिमा करवी एक बानु छे, निमित छे, वाचवू विचारवू वास्तव में तो महिमा ओळखण थी आवी जोईए, અને તેનો અભ્યાસ કરવો એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી કે હું ચૈતન્ય જુદો છું, વેજ્ઞાન હું ચૈતન્ય છું, સર્વથી સર્વ પ્રકારે ભિન્ન છું, કેવળ અસંગ ચૈતન્ય છું, એ અભ્યાસ કરવો એટલે પ્રયાસનો અભ્યાસ કરવો, વારંવાર પ્રયાસ કરવો, એનું નામ અભ્યાસ છે। आओ सहज प्रयास चालवो जोईए, सहजे चालाज करे, बीजा परिणाम केम सहजे चाले छे, चाले छे के नहीं चालता? ज्यां सुख बुद्धि छे त्यां परिणाम सहजे चाले छे। जेने जेनी रुचि छे एनाथी एने थाक लागे छे के नहीं लागे? रुचि होवी जोईए, पोताना स्वकार्यनी रुचि होवी जोईए। रुचि होय तो रस होय, अने रुचि ने रस होय त्यां थाक लागे नहीं। पछी वांचन थी विचार थी ए तो बधा एना निमित्तो छे, वास्तवमां अंदरमां प्रयत्न चालवो जोईए। प्रयत्न ही प्रयत्न, अने प्रयत्न में प्रयोग होय छे, પ્રયોગ અને પ્રયત્ન સાથે હોય છે અથવા અવિનાભાવી હોય છે, એટલે એમાં પોતાનો રસ, સ્વકારીનો રસ વધતો જાય છે, એટલે એમાં થાક લાગે નહીં. એનો અર્થ કે થાકવું નહીં. ઉપદેશમાં શું કહે? થાકવું નહીં. ઉપદેશમાં તો એમ કે થાકવું નહીં, પણ થાક લાગી જાય તો શું કરે? બંધ થઈ જાય બધું. થાક લાગે એટલે વાંચવું વિચારવું બધું બંધ થઈ જાય, એ યથાર્થ પ્રયત્ન નથી. એવો પ્રયત્ન ચાલવો જોઈએ કે જેમાં થાક લાગે નહીં. હોશ ઉત્સાહ વધતો જાય. શું થાય? થાક તો લાગે નહીં, પણ વધતો જાય ઉત્સાહ. કેમ? કે પોતે પોતાના શાંત સ્વરૂપની સમીપ જતો જાય છે. પ્રયાસમાં શું થાય છે? કે પોતે પોતાના શાંત સ્વરૂપની સમીપ જતો જાય છે, માટે થાક નથી લાગતો. જેમ કોઈ ઉનાળામાં ગરમીમાં શેકાતો હોય તડકામાં, એને ઠંડી હવા સારું લાગ્યું કે નહીં, કે થાક લાગે એમાં? ગરમીમાં થાકી જાય ગરમીથી, પછી એને ખબર પડી કે આ બાજુથી ઠંડી હવા આવે છે તો એ બાજુ કોઈ ઠંડા શીતળ જળનું સરોવર હોવું જોઈએ, અને કોઈ એ બાજુનું મોટું સરોવર હતું, ત્યાંથી હવા આવતી હતી. એ બાજુ જેમ જેમ જાય તેમ તેમ ઉત્સાહ વધતો જાય ને, ઠંડી અને એને ગરમી ઘટતી જાય, અને શાંતતા ઠંડાપણું આવતું જાય, શીતળતા આવતી જાય. એવી વાત છે. પછી એક ટેલ નાખવાની વાત એમણે આ વચનામૃતમાં લીધી છે, એમની ખાસ વાત છે, સ્પેસિફિક વાત છે. એ પોતાના પ્રયોગની એમણે વાત કરી છે. હું તો ટેલ નાખતો હતો, ટેલ સમજે? ભજન સુનાતે અર્લી મોર્નિંગ, શાંતિ હોતી ને, સબ સોતે, વો ભજન સુનાતા, સુનાને કો નિકલતા યાદ. ફિર 3-4 મહિને કે વાત બોલતા કે જા રહે હૈ, આપકો કુછ દેના હો તો દે દીજીએ. ફિર ઉનકો સબ કુછ 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 ને કુછ પૈસે દેતે હૈ, તો દૂસરા ગામ મેં ચલા જાતા હૈ. ઉસકો કહેતે હૈ ટેલ. હિન્દી વર્ડ હૈ? હિન્દી મેં ભી ટેલ બોલતે હૈ. કહાં તક? જહાં તક મંદિર કા દરવાજા નહીં ખુલે વહાં તક. ભગવાન કે દર્શન કે લીએ કોઈ ટહેલતા હૈ, કહાં તક ટહેલતા હૈ? દરવાજા નહીં ખુલતા હૈ વહાં તક. એસા પ્રયાસ કરના કે અંદર કે કિવાડ ખુલે નહીં, વહાં તક પ્રયાસ ચાલુ રખના. વો ખુદ એસે કરતે થે બેંચરે, એટલે વો બાત લીયા હૈ. ચોપન 55 બે નું બાકી છે. ધ્યાન, આત્મધ્યાન એમ કરો, આત્મધ્યાન એ એક આત્મિક સુખનો અત્યંત આકર્ષણ છે. અત્યંત આકર્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલું પરિણામ છે.
जीव नो स्वभाव જ્યાં સુખનો નિશ્ચય થયો હોય તેના પ્રત્યે પરિણામની દોડ લગાવવાનો છે. તેથી જેને સ્વરૂપ સુખ પ્રતિભાસે છે, કોમા અનુભવાંશે અસ્તિત્વ ગ્રહણ થાય છે, તેને તેના પરિણામ સહેજે સહેજે સ્વરૂપ પ્રત્યે ખેંચાવા શરૂ થાય છે. અને ભેદજ્ઞાનપૂર્વક પછી એકાગ્રતા જામે છે. આમ ઓળખાણરૂપ જ્ઞાન અને ભેદ જ્ઞાનના પુરુષાર્થરૂપ જ્ઞાન એવા જ્ઞાનપૂર્વક અખંડ સ્વરૂપમાં અખંડ ઉપયોગ લાગે છે. અને તે જ યથાર્થ ધ્યાનનું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપના આવા સાચા જ્ઞાન વિના કદી સાચું ધ્યાન હોતું નથી.